सजीवम साद्वैतम सावतीतम भजन सीतम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान शेष जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत वासुदेव गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद फर्दर आर्ग्यूज जस्ट मिनट रुके अर्जुना फर्दर आर्ग्यूज ना अर्जुन के और क्या बोलते हैं और वाद है वाद विवाद अर्जुना फर्दर आर्ग्यूज एंड एट द एंड कंफ्यूज सरेंडर टू कृष्णा द सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर So how will it अर्जुन के और वाद और नहीं और वाद नहीं So how you will put that? You know something? स्वधर्म का पालन सदा खुशियां लाती है. खुशी वर्ड इज नॉट सो गुड, दैट इज योर बॉम्बे हिंदी. नहीं, ऑलवेज ब्रिंग्स हैप्पीनेस मींस सुख सुख ना. सदा सुख स्वधर्म का पालन सदा सुख प्रदान करती है रजत ना. हमेशा सो जस्ट यू डू दिस वन एंड दैट फर्स्ट वन सम चेंजेस क्विकली डू सो दैट एवरीवन गेट्स सो व्हाट वी विल डू विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम. यू ट्रांसलेट then we'll discuss. And I told on this part, I think. So, likhle, Hare Krishna. तो दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक श्रील प्रभुपाद ने बताया गीता का सार, इस अध्याय का सार है कि गीता का सार वही अध्याय का सार है। तो इस अध्याय में जैसे आप जानते हैं हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम लोग पिछले अध्याय में देखा अर्जुन भ्रमित हो गए भौतिक स्नेह के प्रभाव में आकर, तो उसको उससे मुक्त करने के लिए भगवान कृष्ण अभी आध्यात्मिक जीवन के जो ABCD बताते हैं कैसे हम शरीर नहीं है और आत्मा है, और भगवान इसके बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं आत्मा के गुणों के एक्सेट्रा, और कैसे इस आत्मा के ज्ञान में स्थित होकर एक व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए जिसको बुद्धि योग कहते हैं, तो उसका भी वर्णन करते हैं। और अंत में भगवान उस व्यक्ति के लक्षण को वर्णन करते हैं जो इस ज्ञान में स्थित है। तो यह सब चीज इस में वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद भी इसको इस अध्याय का अलग अलग जगह पर सार रूप में उसको उसका सारांश वर्णन करते हैं, हम लोग देखेंगे। पहले श्लोक के तात्पर्य को ले, जल्दी जल्दी नहीं तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो प्रभुपाद पहले श्लोक के तात्पर्य के अंत में यहां पर लिखते हैं इस अध्याय का सारांश। हमेशा हमें एक बात जानना चाहिए, पहला अध्याय और अंतिम अध्याय, नहीं पहला श्लोक के तात्पर्य और अंतिम श्लोक के तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें पूरा अध्याय में जो भी वर्णन आता है उसके बारे में प्रभुपाद लिखते हैं, पूरा बहुत सारा सिद्धांत आपको मिलेगा वहाँ पर, और बीच बीच में कोई नया विभाग आरंभ होता है वहाँ पर भी प्रभुपाद जोर देते हैं। तो लेकिन यह पहला श्लोक के तात्पर्य और अंतिम श्लोक के तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पहले श्लोक के तात्पर्य देखिए, यहाँ अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, आत्म साक्षात्कार के बारे में उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। और कौन हो सकते हैं इसके इसके बारे में अच्छी तरह से बोलने के लिए और कोई व्यक्ति हो सकते हैं क्या? इसलिए भगवान कृष्ण परम अधिकारी, सभी ज्ञान के परम अधिकारी कौन है? भगवान कृष्ण। तो हम लोग पिछले अध्याय में चर्चा किया भगवान धर्म के पिता है, तो यहाँ पर भगवान को ज्ञान के ऊपर परम अधिकारी माना गया है, तो वो हमें जानना चाहिए। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे, तो उसको ही बुद्धि योग कहते हैं, निष्काम भाव से कर्म करना, और आत्मबोध को प्राप्त हो। आत्मबोध को प्राप्त हो, इंग्लिश इट इज इन
and is situated in the fixed conception of the real self.
Okay.
फिर उसके बाद में प्रभुपाद इसको उस दिन हम पढ़ रहे थे ना अंतिम श्लोक के तात्पर्य में भी इस अध्याय के बारे में बोलते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने मतलब 72nd वर्स पर पट 72वां श्लोक के तात्पर्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद्गीता का इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद्गीता का प्रतिपाद्य है सार है कर्म योग ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है ऐसे कहते हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने इस अध्याय का शीर्षक दिया है सार गीता सार क्योंकि इसमें संक्षेप रूप में सभी विषयों के बारे में जो भगवान वर्णन करने वाले आगे जाकर उसको जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो ज्ञान तीन विषय है बेसिकली ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग। द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है। सो ज्ञान योग का कहाँ पर वर्णन हुआ है द्वितीय अध्याय में 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक जिसको सांख्य योग भी कहते हैं। और कर्म योग का वर्णन कहाँ पर हुआ है तो विशेष करके 38-29वां श्लोक से लेकर 53वां श्लोक तक कर्म योग का वर्णन हुआ उसको ही बुद्धि योग भी कहते हैं है ना। सो निष्काम भाव से कर्म करना उसको हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे बाद में। और भक्ति योग की भी झांकी दी गई है दे दी गई झांकी ग्लैंस आर व्हाट इज इट ग्लिम्स ग्लिम्स ऑफ सो भक्ति योग इज आल्सो गिवन एज अ ग्लिम्स ऑफ नाउ जानकी क्यों पर बता रहे प्रभुपाद भगवद्गीता में तो वो एक ही श्लोक में भक्ति के बारे में वर्णन आता थाणि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः मत्परः मतलब कृष्ण भावना भावित होना वासुदेव परायण नारायण परायण परह वो कौन सा श्लोक है पता है सो नहीं हाँ ये भगवद्गीता में मत परह शब्द आता है ना उसमें तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परह नॉट मेमोराइज वेर विच वर्स नंबर यू शुड रिमेम्बर 61 देयर इट इज टोल्ड हाँ वहां पर बताया गया है इंद्रियों को कैसे निग्रह किया जाता है जब कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं हमारे मति कृष्ण हमें लग जाता है तो अपने आप इंद्रियां नियंत्रित हो जाते हैं। मद भक्ति प्रभावेन सर्वेंद्रिय विजयः मेरे भक्ति के प्रभाव से सभी इंद्रियों के ऊपर विजय हासिल हो जाता है। वो मत पर शब्द का अर्थ बलदेव विद्याभूषण ऐसे लिखते हैं प्रभुपाद उसको उल्लेख करते हैं उस ठाकुर मद भक्ति प्रभावेन सर्वेंद्रिय विजय तो इसलिए झांकी दी गई ग्लिम्स। फिर और उसके बाद में तीसरे अध्याय के पहले श्लोक देखिए श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन के संसार के शोक सागर से उबरने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप तथा विशद वर्णन, स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। तो वहां पर भी प्रभुपाद यह सार रूप में बता रहे कि क्या इस अध्याय में वर्णन हुआ है। तो शोक से कैसे मुक्त किया जाता है, आत्मा का स्वरूप वो दूसरा विभाग में है ना, वो विभाग कैसे होता शुरू होता है, नत्वम शोचितुम अरहसि नहीं अशोचानन्व शोचस्त्वाम प्रज्ञावादंश भाषसे गतासु नगताशंश नानु शोचन्ति पंडिता। शोक शोचन्ति शोक नहीं करते हैं, बाद में नत्वम शोचितुम अरहसि बार बार ये आता है, नत्वम शोचितुम अरहसि वो बीच में भी आता है, अंत में तीसवा श्लोक में भी आता है। तो शोक नहीं करना, शोक नहीं करना, शोक नहीं करना, इसका अर्थ क्या हो जाता है, जब देहात्म बुद्धि में रहते हैं उसके एक प्रभाव से हम लोग शोक में डूब जाते हैं, जब आत्मा का ज्ञान आता है तो शोक से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए शोक सागर से प्रभुपाद अच्छी तरह से वर्णन, शोक के सागर, अर्जुन शोक के सागर में डूब गए थे, रो रहे थे, वो उबराने के लिए उबराने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह बुद्धि योग या कृष्ण मार्ग। तो फिर बाद में बुद्धि योग का वर्णन करते हैं तो मार्ग को। और तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भी प्रभुपाद तात्पर्य कैसे वर्णन शुरू करते देखे, पिछले अध्याय में भगवद्गीता का उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। सो पोजिशन ऑफ द नियोफाइट कहां पर वर्णन आता है, वो नवदीक्षित का पिछले श्लोक अध्याय में वही बताएंगे, दूसरे अध्याय में कहां पर नवदीक्षित का वर्णन आता है। नवदीक्षित की स्थिति आई अंडरस्टैंड इट टू बी दैट वन, जो सो कॉल्ड फॉलोअर्स ऑफ द वेदास यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरतपातनानस। दीक्षा मतलब उसके बाद में वेदों का अध्ययन शुरू हो जाता है, वो लोग उसे कर्मकांड में ज्यादा आसक्त रहते हैं। नवदीक्षित की स्थिति, ओके दैट इज अ पेंडिंग क्वेश्चन। तो ऐसे यहां पर वर्णन करते विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। फिर पांचवें अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में भी श्री प्रभुपाद इस अध्याय के बारे में बोलते हैं। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा मिल गया 5.1। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है, उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है ना ऐसा। फिर उसके बाद में 12वें अध्याय के पहले श्लोक में इसके बारे में, इस अध्याय के बारे में लिखते भक्ति योग। तो खोल दिए, भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। नंबर लिख लीजिए,
2.1, 272, 3.1, 3.2, 5.1, 12.1
ऐसा लिख लीजिए कहाँ कहाँ इस अध्याय के बारे में वर्णन आता है। 2.1, 2.72, 3.1, 3.2, 5.1, 12.1 ठीक है। टू पॉइंट वन टू सेवेंटी टू थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट टू फाइव पॉइंट वन फाइव ट्वेल्व पॉइंट वन और कुछ है तो आप भी कोशिश कीजिए ऐसे कुछ विभाग बनाने के लिए जब भी नया अध्याय आता है। हमने बताया ना कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है वार्तालाप में बदलाव आ जाता है थोड़ा और और उसके सार का एक शीर्षक दे दीजिए। पहले संजय और उसका अर्जुन के विषाद के बारे में वर्णन करते हैं और इसके बाद में भगवान कृष्ण उनको खंडन करते हैं कि कैसे उनके लिए योग्य नहीं है ऐसे शोक करना क्षत्रिय होने के कारण, वो आर्य समाज से आने के कारण। फिर अर्जुन बात करते हैं कैसे मैं इनको मार सकता हूँ, ये मेरा पूजनीय है भीष्म द्रोण वगैरह। और अच्छा है कि ऐसे गुरुजनों को मारने से कि भीख मांग के जीवन व्यतीत करना अच्छा है। और उनको ये भी समझ में नहीं आता कि युद्ध करना अच्छा है या युद्ध नहीं करना, या मारना अच्छा है मार उनसे मारा जाना अच्छा है, तो ये सभी चीज़ों में वो बहुत ही विचलित हो जाते हैं। तो फिर सातवें और आठवें श्लोक में क्या करते हैं, वो उनके शरण में जाते हैं कि मैं अरे कृपण दुर्बलता के कारण मेरे समस्याओं को हल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा धर्म क्या है वो निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ, आप कृपा करके मुझे बताइए क्या मेरा धर्म है, ऐसे वो कहते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे समस्याओं का मैं हल नहीं कर पा रहा हूँ तो या हल नहीं कर पाऊंगा उनको, देवता उनके समान राज्य प्राप्त होने के बाद भी मैं इन समस्याओं को हल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप मुझे बताइए। फिर भगवान जब देखे कि उनके भक्त और मित्र फ्रेंड अर्जुन उनके मित्र थे तो ऐसे शोक अवस्था में है और उनको शरणागत हो रहे हैं, इसलिए वो प्रसन्न थोड़ा हंसने लगे। वो हंस के तुरंत ही, क्योंकि अर्जुन शरणागत हो गए थे उनको शिष्य के रूप में, अभी गुरु का स्थान लिया उन्होंने, तो ऐसे ये पहला जो विभाग है खत्म होता है। तो और उनको दोनों सेनाओं के बीच में उपदेश करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक भगवान अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं और आत्मा और शरीर के बीच में क्या अंतर है उसका ज्ञान देते हैं। पहले उनको थोड़ा टुकराते हैं कि आप बहुत पंडित जैसे वचन बोल रहे हो लेकिन पंडित लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, उसका अर्थ क्या है, आप मूर्ख हो, प्रभुपाद कहते हैं उसको बुद्धि जेंटलमैनली वे ऑफ चस्टाइजिंग। तो एक सभ्य व्यक्ति ऐसे दूसरों को जानते हैं। तो आप पंडित जैसे बात कर रहे हैं, लेकिन पंडित लोग ऐसे बात नहीं करते। दूसरे शब्दों में क्या है वो, आप मूर्ख हो ऐसे बोल रहे। तो फिर आत्मा कैसे एक नित्य व्यक्ति है? भगवान भी नित्य व्यक्ति है, आत्मा भी नित्य व्यक्ति है, और सभी जो भी जीव है वो सभी नित्य व्यक्ति है। लेकिन भगवान क्या है? परम सत्य है, वो सुप्रीम। और उसके बाद में कैसे शरीर बदलता है लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलता है, और आत्मा शरीर के परे है, उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो फिर इसलिए ये जो अस्थाई सुख दुख जो आते हैं जब हम लोग अपना कर्तव्य निभाते वक्त, उसको सहन करने के लिए आपको सीखना चाहिए। यही मुक्ति के लिए क्या है, अमृतत्व के लिए या मृत्यु के परे जाने के लिए अधिकार है, ऐसे भगवान कहते हैं। तो फिर तत्व ज्ञानियों ने शरीर और आत्मा के जो स्वभाव है उसको समझकर, उसको दोनों को अध्ययन करके हम लोगों को बताया है कि ये शरीर का कभी चिरस्थायित्व नहीं है और आत्मा का कभी बदलाव नहीं होता है, ऐसे कहते हैं। और कैसे ये जीवात्मा का जो चेतना है पूरा शरीर में फैला हुआ है तो उसका कभी नाश नहीं होता, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। और शरीर ये अंतवंता है जो उसका नाश हो जाएगा। और आपको ऐसा कोई जो सोचता है कि मैं किसी को मारता हूं और वो मरते हैं, वो वास्तव में ज्ञान में नहीं है, क्योंकि आत्मा का कभी जन्म होता नहीं है, कभी वो मृत्यु होता नहीं है। उसका उसका क्या है, उसका कोई फास्ट प्रेजेंट मतलब भूत वर्तमान और भविष्य नहीं है, तो वो हमेशा विद्यमान है। तो जब आत्मा का नष्ट हो जाता है या शरीर का नष्ट हो जाता है तो उसका नाश नहीं होता है। तो और शरीर कैसे, जब हम लोग अपने जो वस्त्र बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर को बदलता रहता है, इसको ही पुनर्जन्म का सिद्धांत बोलते हैं। तो और आत्मा को कोई हथियारों से नहीं मारा जा सकता है। एवरीवन स्लेप्ट लेट यस्टरडे नाइट, ऑल आर स्लीपिंग, प्रसाद ज्यादा हो गया सो तो ये। और आत्मा का क्या होता है, उसका नित्य स्वरूप होता है और आत्मा सब जगह विद्यमान रहता है और वो अचिंत्य है और उसको देखा नहीं जा सकता है, अव्यक्त है। सिर्फ हम लोगों को वेदों से उसको समझा जा सकता है उसको, हालांकि भगवान भी उसको समझने के लिए तर्क भी देते हैं आत्मा के अस्तित्व के बारे में। ऐसा नहीं कि बिलीव 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 उन लोगों को। और इन सभी ओके, हम लोग उसको बाद में चर्चा करेंगे। तो फिर भगवान ये भी बात करते हैं उनको युद्ध करने के, शोक ना करने के लिए, आप आत्मा के अस्तित्व को मानते नहीं है तो भी आपको शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप ये शरीर क्या है, अलग अलग भौतिक वस्तुओं से बना हुआ है, तो उसके लिए शोक करने का क्या जरूरत है, तो वो तो नष्ट नहीं होंगे, है ना। तो जन्म से पहले ये भौतिक तत्व थे, जब जन्म हुआ ये शरीर था तभी भौतिक तत्व थे, अंत में भी वो रहेंगे, उसके लिए क्यों आपको शोक करना चाहिए। तो जो अन्य दर्शन है उसके बारे में वर्णन करते हैं, वेदों का छोड़कर अन्य दर्शन जैसे बौद्धवाद या आधुनिक विज्ञानवाद और क्या है निरीश्वर चार्वकवाद वगैरह, है ना, लोकायतिकवाद, वैवेशिकवाद और कुछ वैदिक दर्शन भी वर्णन करते हैं, जो 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 अंत में वेदों का जो सार है उसको स्वीकार नहीं करते, जैसे सांख्य कर्म मीमांसा वगैरह। तो ये सब कहकर अर्जुन को शोक से भगवान मुक्त करने के लिए कोशिश करते हैं। वो दूसरा विभाग है, और तीसरा विभाग स्वधर्म के बारे में वर्णन करते हैं, कैसे वर्णाश्रम धर्म को पालन करने से हम लोगों को अभी भी सुख मिलेगा और अंत में हम लोग भगवान के पास वापस चले जाएंगे। तो क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि ये युद्ध क्या लेगा, कभी सुख को प्राप्त नहीं करेगा, इसमें सिर्फ विपरीत होगा, ऐसे कह पहले अध्याय में उन्होंने कहा था ना। तो अर्जुन वहां पर लूज लूज सिचुएशन वर्णन किया था उन्होंने, मुझे सिर्फ इस युद्ध से हार ही हार मिलेगा, मैं जीतूं या हारूं दोनों स्थिति में भी मुझे अपजय पराजय ही प्राप्त हो जाएगा, ऐसे कहते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर उसको खंडन करते हुए कहते हैं कि आपको पराजय नहीं, आपको हमेशा जय ही मिलेगा। युद्ध में मरेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, युद्ध में नहीं मरेंगे तो आपको बहुत सारे सुख राज्य सुख प्राप्त हो जाएगा, ऐसे कहते हैं। अंत में वो कहते हैं कि जय विजय पराजय और सुख दुख इससे परे जाकर एक कर्तव्य बद्ध होकर युद्ध कीजिए, ऐसे कहते हैं। सो इसको इसको ही भगवान बुद्धि योग कहते हैं। तो बुद्धि योग का अर्थ है एक व्यक्ति कर्म के जो फल है उसको आसक्त हुए बिना कर्म करता है, एक मतलब इसका अर्थ है कि वो इंद्र तृप्ति को त्याग देता है, इंद्रिय भोग को। उस जमाने में लोग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंद्रिय तृप्ति कर देते, बहुत इंद्रिय भोग कर देते, वो कर्म योग वेदों के नियमों को पालन करते, कर्मकांड के अनुष्ठानों को पालन करते, इंद्रिय भोग को प्राप्त करते थे, अच्छा परिवार में जन्म, बहुत सारे सुविधाएं या ऊंचे लोक में जाना, ये सब वर्णन आता है वेदों में। तो उसको पालन करके इंद्र तृप्ति करते थे, भगवान वो इंद्र तृप्ति की भावना को काट रहे हैं और अर्जुन को बोल रहे कि बुद्धि योग में स्थित होकर कर्म करो, ऐसे इसका। सो उससे आप कर्म के जो, क्योंकि पहले अध्याय में अर्जुन पाप के बारे में होना, पाप में ये वाशे दस्मा हत्वैता नातताइना, तो इनको मारने से मुझे पाप मिलेगा, कुल का नाश होने से मुझे बहुत सारा पाप मिलेगा। लेकिन अर्जुन को कह रहे कि बुद्धि योग क्या है, पाप का पाप से मुक्त मुक्त कर्म करने का विधि है, ऐसे कर्म शु कौशलम, इट्स आर्ट ऑफ वर्किंग, इसी को योग कहते हैं या बुद्धि योग कहते हैं, ऐसे भगवान उनको वर्णन करते हैं। और वो कहते हैं कि जो वेदों में वर्णित या वेद का जो घना जंगल है, तो भौतिक इंद्र तृप्ति का जो घना जंगल वेदों में वर्णन हुआ है, उससे बाहर आ जाओ, आपका बुद्धि को यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंता से निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य च। तो इसका अर्थ बेसिकली कर्मों के फलों से अर्जुन को अनासक्त बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद में चौथा विभाग हो गया, उसके बाद में वो आत्मा के ज्ञान, बुद्धि योग का अर्थ होता है उस ज्ञान के आधार पर कर्म करना, उस ज्ञान में स्थित व्यक्ति का या आत्मा में स्थित व्यक्ति के या समाधि में स्थित व्यक्ति के, समाधि का परिभाषा क्या है, आत्मा के कार्य कलाप में जो मग्न रहता है उसको समाधि कहते हैं। अंत में क्या है वो कृष्ण भावना, क्योंकि आत्मा का कार्य क्या होता है, भगवान को सेवा करना, तो इसलिए उसके लक्षण वो वर्णन करते हैं। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, चार प्रश्न, स्थित प्रज्ञस्य का भाष समाधिस्तस्य केशव स्थितदी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। तो उनका क्या भाषा, उनके क्या लक्षण होते हैं और उनका बोली कैसे होता है, प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि व्यक्ति की भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैसे उनको जानना जान सकते हैं हम लोग उसके उनके भाषा के आधार पर। तो अ फूल इज नॉट रिकॉग्नाइज अंटिल ही ओपन्स हिज माउथ, जब तक व्यक्ति मुंह खोलता नहीं तब तक वो मूर्खता उसकी मूर्खता को नहीं जान सकते हम लोग। एक बार मुंह खोल देता है तो हमें पता चल जाएगा मूर्खता का वो कितना मूर्ख है करके, है ना। एक मूर्ख आपके सामने बैठ के बोल रहे आज तो ये स्थिति। सो मूर्खता का भाषा इसलिए महत्वपूर्ण। ये चारों किम आसीत व्रजेत किम, मतलब कैसे वो अपने इंद्रियों को किन चीजों में नहीं लगाते हैं, कैसे वो अपने इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेते हैं, और दूसरा कैसे अपने चौथा है कैसे इंद्रियों को लगाते हैं, किन में वो लगाते हैं। तो ये सभी प्रश्नों का उत्तर प्रश्न पूछते हैं। इन सभी चार प्रश्नों में उसकी जो कैसे भाषा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रभुपाद वर्णन करते हैं। फिर इसके उत्तर में प्रभुपाद उनके भगवान उनके लक्षणों को वर्णन करते हैं कि सभी भौतिक भोग इच्छाओं को वो त्याग देते हैं जो मन से निकलते हैं, मनोगतांश प्रजाहाति यदा कर यदा कर्मान सर्वान पार्था मनोगतान। तो आत्म में संतुष्टि लेते हैं आत्मा के कार्यकला आध्यात्मिक कार्यकलापों में, तो वो दुख में कभी विचलित नहीं होते हैं, और कोई उनको स्तुति करता है या निंदा करता है उससे भी वो विचलित नहीं होते। और कोई उनको निंदा करते हैं तो उसका वो क्या नहीं करते हैं, प्रतिकार नहीं करते हैं, ऐसे वो भाषा उनका उनके भाषा के बारे में वर्णन करते हैं। और जो जब कोई उनका स्तुति करते हैं तो उससे वो विचलित होकर उसको ही इज नॉट एलेटेड, अत्यंत हर्षित नहीं होते हैं। सो फिर ये भाषा है। फिर उसके बाद में कैसे वो इंद्रियों को नहीं लगाते हैं, जब भी इंद्रिय विषय उनके ऊपर आक्रमण करते हैं तो तुरंत ही जैसे एक कूर्म अपने इंद्रियों को अंदर ले लेता है वैसे ही अपने इंद्रियों को वो इंद्रिय विषयों से हटा देते हैं। तो और क्योंकि उनको ऊंचा रस का आस्वादन करते हैं इसके कारण वो निचले जो रस को त्याग देते हैं, परम दृष्टवा निवर्तते। तो और उसके बाद में भगवान कैसे वो इंद्रियों को लगा के क्या करते हैं युक्त, तो वो इंद्रियों को ऊपर कृष्ण भावनामृत में इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर इंद्रियों को ऊपर जीत हासिल करते हैं। तो और जो मतपर नहीं है वो विषयों से आसक्त है उसके ऊपर ध्यान कर रहा है तो वो उसका कैसे पतन होता है उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो फिर जो इंद्रियों को ऊपर जो काबू नहीं किया है कैसे वो अशांत रहता है, वो अशांति के कारण उसको कैसे सुख नहीं प्राप्त होता है इस जगत में, तो उसको वर्णन करते हुए अंत में भगवान कहते हैं कि ऐसे आत्मा में स्थित व्यक्ति वो जो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके भगवान के धाम में जाता है। तो ये दूसरा अध्याय है, ये चार पांच विभाग। तो पहला श्लोक अभी हम लोग लेंगे। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विशिदं तम इदं वाक्यं उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा करुणा से व्यक्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो हम लोग देखते हैं पिछले अध्याय के 27वें श्लोक में संजय ने वर्णन किया कि अर्जुन कृपया परया विष्टो, एक विशेष ऊंचे दर्जे का कृपा से, कृपा में कृपा दया से वो उनके हृदय भर गया। तो उसके तात्पर्य में, उसके अगले के तात् श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद उसके वर्णन हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे। वो अपने पक्षों के प्रति तो उनके लिए दया था आरंभ से, लेकिन अभी विपक्ष को देखकर उनके ऊपर भी उनका दया आ गया, इसलिए वो कृपया परया विष्ट। तो इस श्लोक में भी कृपया विष्टम तम तथा कृपया विष्टम ऐसे संक्षेप में उसको संजय वर्णन कर रहे। तो पिछले पूरा अध्याय का अश्रुपूर्ण कुले क्षणम प्रभुपाद 28वां श्लोक में वर्णन कर रहे थे। वी कैन इमेजिन दैट, ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि अर्जुन रो भी रहे थे 28वां और 29वां श्लोक में। वो दया के कारण क्या क्या लक्षण अर्जुन के अंदर प्रकट हुए उसके बारे में वर्णन करते हैं संजय। तो उसमें प्रभुपाद एक उन्होंने कहा कि वो अश्रु बहा रहे थे, तो अभी भी शुरू किया उन्होंने, अभी भी बहा रहे अश्रु, बह रहे उनके नेत्रों से अश्रु पूर्ण कुले क्षणम। सो विशिदंतम इदम वाक्य, प्रभुपाद वहां पर क्राइंग रो रहे थे ऐसे बोलते। तो क्योंकि नेत्रों और नेत्रों में जल भर गया है, इसका अर्थ है वो रो रहे हैं, है ना। तो सो विशिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, तो विशिदंतम ऐसे शोक मग्न शोक युक्त अर्जुन, तो ये जो लक्षण है भौतिक कृपा या दया, रोना या शोक करना, ये सभी अज्ञान के लक्षण है ऐसे प्रभुपाद वर्णन करते हैं। तो अज्ञान और ज्ञान का क्या अर्थ होता है? देहात्म बुद्धि में रहना वो अज्ञान का लक्षण है, अपने आप को ये देह मानना वो अज्ञान का लक्षण है, और ज्ञान का लक्षण है कि आत्मा के बारे में जानकारी होना। हम लोग ये भौतिक शरीर नहीं है, वो ज्ञान का लक्षण है, आत्म साक्षात्कार के बारे में जानकारी होना, उसको ज्ञान और ज्ञान कहते हैं। ये दोनों के बीच में अंतर है। तो हम लोग वहां पर दया के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का जो दया है वो सर्वोच्च है करके। तो यहाँ पर अर्जुन का दया, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो अज्ञान के आधार पर है, वो ज्ञान के आधार पर नहीं है, आत्मा के ज्ञान के आधार पर नहीं है, वो अज्ञान के आधार पर है, इसीलिए वो दया क्या है। तो अंत में वो सिर्फ शोक लेकर आएगा, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, सिर्फ इट इज यूजलेस। तो जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वो उदाहरण दे रहे, एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है, आप छलांग मार के क्या करते हैं उसका कपड़ा लेकर आते हैं, तो मैंने कपड़ा बचाया कपड़ा बचाया कपड़ा बचाया करके। तो ऐसे आप अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति, अपने आप को दूसरों को सहायता करने वाले, दया दिखाने वाले व्यक्ति के रूप में हम लोग प्रस्तुत करते हैं, तो उसका क्या क्या फायदा होता है? कुछ फायदा नहीं होता है, इट जस्ट व्यर्थ है। तो शरीर को बचाना ही काफी नहीं है, आत्मा को बचाना चाहिए, वो दया जो है ज्ञान के ऊपर आधारित है, वो असली दया है, वो भलाई करेगा वो। तो श्रील प्रभुपाद 1977 में वो आरंभ में तो ऋषिकेश गए थे। ऋषिकेश आप जानते हैं, ऋषिकेश मतलब मायावादियों का वो केंद्र है, अभी भी बहुत सारे मायावादी है वहाँ। तो वो लोग हर रोज श्रील प्रभुपाद शाम के गंगा के तट पर, वो जहाँ पर रह रहे थे, वो दर्शन देते थे लोगों को, लोग आके उनको मिलते थे, उनसे सुनते थे, आध्यात्मिक ज्ञान को सुनते थे। तो एक बार एक मायावादी सन्यासिनी आई वहाँ पर, तो प्रभुपाद, क्योंकि वो मायावाद का एक केंद्र है, प्रभुपाद जोर से मायावाद खंडन करते थे उस समय पर। तो उसने वो देखकर, प्रभुपाद जी का जोरदार प्रचार को देखकर उसको बहुत असहन हो गया, बहुत क्रोधित हो गई, तो वो बोलते हैं आपके अंदर कोई दया नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं तुम्हारा दया क्या है, एक इट इज अ ब्लोइंग ऑन द बॉयल कहते हैं, जैसा एक फोड़े के ऊपर फूंक मारना, थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत जो दर्द है उससे मुक्त करता है, थोड़ा समय एक क्षण के लिए फूंक मारने से, लेकिन फोर्स के जो दर्द है उससे मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, उसके ऊपर उसको काट देना चाहिए। तो वो असली दया है। तो साधु मतलब ऐसे हमारे अंधकार और अज्ञान को काटते हैं। ततो दुस्तं गमस्तज्ज सत्सु सज्जेतस बुद्धिमान संत एवास्य चिंतन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। भगवान श्री कृष्ण संत का या साधु का परिभाषा देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे असत संग को त्याग कर अच्छे संग को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा संग मतलब जो साधु का संग करना चाहिए, संत का, संत वो क्या करते हैं, संत एवास्य चिंतन्ति, वो खाटते हैं, खाटना ही संत का साधु का परिभाषा कार्य है और कुछ नहीं। मनोव्यासंग मुक्ति भी ही, जो मन मन के कारण मनोगणित, सो मनोगतान मन गणित, जो आसक्तियां हैं उसको अपने कठोर वचनों से वो काटते हैं, वही साधु का परिभाषा है। भगवान स्वयं इसको बोलते हैं, ये श्लोक को श्रीमद् भागवत भगवदगीता में नहीं, श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद में। तो एनीवे वो असली दया है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते थे ना, तो वो कथा बताते थे किसी को फोड़ आया था, वो ऐसे वो यहाँ पर जो उदाहरण देते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, तो वो असली दया है। आजकल लोग बहुत सारे लोग समाज सेवा करते हैं, ये कैंसर हॉस्पिटल शुरू करना या किडनी क्या है किडनी ऑपरेशन करना, मुफ्त में औषध देना या आई ऑपरेशन करना या और क्या क्या करते हैं, वाले रक्तदान करते हैं और क्या करते हैं, और क्या क्या करते हैं आजकल लोग, आजकल ज्यादा डॉक्टर लोग बहुत ज्यादा क्रियाशील है कुछ ऐसे कुछ करने में, और दूसरा लोग और कौन है, तथाकथित जो आध्यात्मिक संस्था है वो इसमें लगे हुए हैं। एक मैं एडवर्टाइज सुना था, एक मिशन है वो एडवर्टाइज फ्री कंप्यूटर एजुकेशन, ऐसे लोग जो धान्य उगाने वाले नहीं है ये लोग कंप्यूटर सिखा के वो लोगों को बर्बाद करेंगे। नारायण सेवक वो विवेकानंद ने प्रचार किया उसका, दरिद्र नारायण सेवा, तो ऐसे कहते विवेकानंद बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है ना विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद तो ऐसे है वो लोग, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं कि ऐसी जो दया क्या करती है उसका दो समस्याएं हैं बोलते हैं। एक है वो निरीश्वरवाद को नास्तिकवाद को फैलाता है। क्यों नास्तिकवाद को फैलाता है, ऐसे जो मानव सेवा करने वाले या समाज सेवा करने वाले वो भगवान बन जाते हैं, असली भगवान को भूल जाते हैं, वो भगवान बन जाते हैं, ऐसा ही हो जाता है ना। और दूसरा है लोगों को नरक की ओर लेके जाता है वो, क्योंकि उनको ऐसे सुविधा देने से या इंद्र तृप्ति कराने से क्या हो जाता है, और वो भोग और पाप में लिप्त हो जाएंगे और नरक हो जाएंगे। ये दो इसका क्या है समस्या है सुमाना, इसलिए अंत में सिर्फ कृष्ण भक्ति ही सबको भलाई करेगी, वही सर्वोच्च कल्याणकारी कार्य है, क्योंकि वो आत्मा के ज्ञान पर आधारित है। वो ज्ञान के आधार स्तर के स्तर पर है, अज्ञान के स्तर पर नहीं है। सभी लोग इस जगत में अज्ञान के स्तर पर है। एवरीबडी इज एक्टिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ बॉडी, शरीर के स्तर पर ही काम कर रहे हैं सब दुनिया में लोग। सो शरीर क्या है, मृत है हमेशा। सो इट इज डेड, सो दे आर एक्टिंग ऑन डेड प्लेटफॉर्म, मृत स्तर, शरीर के स्तर पर काम कर रहे हैं लोग। तो ये ज्ञान और अज्ञान है। अभी अर्जुन अज्ञान के शोक में डूब गए हैं। तो तम उवाच मधुसूदन, फिर मधुसूदन यहाँ पर जो संजय कह रहे हैं कि उस समय जो मधुसूदन है वो ये वचन बोलना शुरू कर दिया। तो संजय ये मधुसूदन शब्द यहाँ पर इसलिए ये उपयोग किए, उसका अर्थ क्या है, मधुसूदन का अर्थ है कि जो मधु नामक असुर को मारा था जिन्होंने, उनको मधुसूदन, भगवान कृष्ण ने मधु नामक असुर को मारा था, इसलिए उनका एक नाम है मधुसूदन। तो यहाँ पर अर्जुन के जो अज्ञान और अंधकार का जो जो असुर है, वो असुर बैठे हैं या असुर उनको कब्जा किया है, उनको भगवान अभी क्या करेंगे, मारने वाले। तो इसलिए ये मधुसूदन शब्द को उपयोग करेंगे। तो संजय अगेन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत चतुराई से धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि हालांकि अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन अभी भगवान उनको युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन करेंगे। एक दृष्टि से उनको चाहते हैं, वो चाहते हैं। धृतराष्ट्र पहले श्लोक में, हम पिछले अध्याय के पहले श्लोक में हम लोगों ने देखा ना कि ही डिडंट वांट, समझौता नहीं चाहता धृतराष्ट्र को, ये धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर ये लोग समझौता तो न किए ना ऐसे, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो लोगों ने ऐसे प्रश्न पूछा, समझौता तो नहीं किया। तो एक दृष्टिकोण से संजय क्या बोल रहे हैं, उनको निरुत्साही कर रहे हैं क्योंकि अभी अर्जुन युद्ध करने वाला है। एक दृष्टि उनको उत्साहित कर रहे, युद्ध होगा 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 करके। तो ऐसे एक और महत्वपूर्ण चीज हम लोग यहाँ पर सीखते हैं, तो प्रभुपाद यह तात्पर्य में कहते हैं, अर्जुन तो क्षत्रिय था अतः उसे ऐसे आचरण की आशा न थी। तो ऐसे लेते वो अगले श्लोक के श्लोकों के ऊपर ये तात्पर्य है बस। तो उससे कुतस्वा कश्मलम इदम, वो आशा नहीं किया था उन्होंने कि मतलब क्षत्रिय जो होते हैं उसके ऊपर हम लोग और चर्चा करेंगे और आगे का श्लोक लेंगे उसको। श्री भगवान उवाच कुतस्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्यम अकीर्तिम करम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो, इससे उच्च लोक की नहीं अपितु तो अपशय की प्राप्ति होती है। कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमेश, अभी यहाँ पर अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं, उनको चेस्टाइज, व्हाट इज इट, डांट रहे हैं। ये पहली बार श्री भगवान उवाच इस श्लोक में आया, देखिए भगवद्गीता में पहली बार अभी। तो विकास क्योंकि पहली बार पिछले अध्याय के 25वें श्लोक में उन्होंने कहा हे पार्थ ये सभी कुरुओं को देखो, ऐसे उन्होंने पहली बात उन्होंने बताया, लेकिन वास्तव में इस श्लोक में वो बात कर रहे हैं, भगवान अभी पहली बार वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, इसलिए श्री भगवान वाच। तो कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमेशम श्री भगवान वाच, तो श्रील प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे, तो क्यों भगवान कृष्ण भगवान है, कृष्ण क्या है, वो भगवान है, क्योंकि भगवद्गीता में हमेशा उनको श्री भगवान करके संबोधित किया गया। ऐसा नहीं कि लिखा गया कृष्ण हुआ अच्छा करके, नहीं, श्री भगवान हुआ अच्छा। तो पिछले अध्याय में भगवान को धर्म के पिता के नाम से, पिता के पिता जैसे वर्णन हुआ था, वो कैसे इंद्रियों के स्वामी हैं, तो और जो लक्ष्मी देवी के पति है वो कैसे सभी जीवों के पालक है और सभी के हत्यारे भी है, ऐसे अलग अलग तरीके से वर्णन हुआ। अभी भगवान को कैसे 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण युक्त है, ऐसे यहाँ पर वर्णन होगा। तो कृष्ण को भगवान करके संबोधित किया गया क्योंकि वो परम देवोत्तम पुरुष है, वही परम सत्य है। तो परम सत्य भगवान कृष्ण परम सत्य इसलिए है क्योंकि वो परम सत्य के परिभाषा जो है, ही कन्फर्म्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट। तो अलग अलग परिभाषा होते हैं परम सत्य का, उस परिभाषा को देखेंगे तो वो भगवान फिट, उस भगवान उसमें क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। इसलिए वो कृष्ण क्या है, परम देवोत्तम पुरुष या वो परम सत्य है। तो यहाँ पर श्री भगवान उवाच एक परिभाषा है, परम सत्य का एक परिभाषा है। या ऐसे प्रश्न उठ सकता है, क्या परम सत्य व्यक्ति है, तो या वो निराकार है, या उनका स्वाकार स्वरूप है या निराकार स्वरूप है। और उसके पहले भी और भी कई परिभाषा आते हैं कि परम सत्य वो है जिससे सब कुछ निकलता है, और परम सत्य क्या है, पूर्ण है। तो ऐसे कई सारे परिभाषा है परम सत्य का। तो अभी परम सत्य क्या साकार है या निराकार है, तो परम सत्य तो निराकार नहीं हो सकता है। क्यों क्यों निराकार नहीं हो सकता है, क्योंकि परम सत्य का अभी हम लोगों ने मैंने एक उल्लेख किया, एक परिभाषा है जिनके जिनसे सब कुछ निकलता है। तो परम सत्य वो है जिनसे सब कुछ निकलता है, तो रूप भी आकार भी उनसे निकलना चाहिए। उनके अंदर आकार नहीं है तो कैसे वो हमारे अंदर, जो हम सब लोग परम सत्य से निकले, हमारे आकार हो सकते हैं। यहाँ पर रूप भौतिक जगत में कैसे रूप हो सकता है, तो ये तार्किक दृष्टिकोण से गलत है। पहला ये आर्ग्यूमेंट है। कोई आपको पूछेंगे तो क्या कहेंगे, परम सत्य आकार है या साकार है ना, ऐसे आपको पूछेंगे तो क्या करेंगे। तो ये पहला हमें वाद प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि परम सत्य ऐसे उपनिषदों में ओम पूर्ण मद पूर्ण करके संबोधित है, क्योंकि या परम सत्य ऐसा जन्मा, जैसे वेदांत सूत्र में और श्रीमद् भागवतम में उसको जन्मा, जिनके द्वारा जिनसे सब कुछ निकलता है ऐसे। तो और दूसरा वाद है कि परम सत्य पूर्ण है, तो सो परम सत्य पूर्ण है, तो पूर्ण में पूर्ण का अर्थ होता है हमारे जो अनुभव में है और हमारे अनुभव के जो परे है वो सब कुछ उनके अंदर होना चाहिए, है ना। हमारा अनुभव क्या है, सीमित है, इसलिए हमारे अनुभव में जो कुछ भी है उनके अंदर होना चाहिए, और हमारे अनुभव के परे जो है वो भी होना चाहिए उनके अंदर, इसका अर्थ होता है पूर्ण। अभी हमारे अनुभव में सब जगह रूप वगैरह है, तो उनके अंदर भी होना चाहिए, लेकिन वो रूप क्या होता है, हमारे और आपका जैसा रूप नहीं होता है वो। इसलिए तीसरा वाद क्या आ सकता है, लोग बोलेंगे आप उनको रूप को, भगवान अनंत है या परम सत्य अनंत है, वो सीमित नहीं है, इसके कारण आप उनको रूप देखकर क्या कर रहे हैं, उनको सीमित कर रहे हैं, ऐसे वाद आ सकता है। जब ऐसे आप ना दो आप वाद प्रस्तुत करेंगे तो फिर उसके उत्तर में हम आप क्या बोलेंगे बताइए। परम सत्य को आप सीमित करेंगे कर रहे हैं, एक आकार देकर उनको ऐसे कहेंगे। तो आप उनको निराकार कहकर सीमित कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर आकार नहीं है, तो हमसे भी हमें आकार है, उनको आकार नहीं है, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, उनमें कुछ कमियां हैं। कभी स्रोत में या कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं ना उसको, तो क्या बोलते हैं उसको, स्रोत और उसका या कारण और प्रभाव का जो सिद्धांत है उसके अनुसार प्रभाव में ऐसे कोई भी गुण नहीं होना चाहिए जो कारण में है। सो देर शुड नॉट बी एनी एट्रीब्यूट इन द इफेक्ट विच इज नॉट देयर इन द कॉज, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं, उनको सीमित कर रहे हैं, आकार ना है कहकर आप उनको सीमित कर रहे हैं। तो अभी प्रश्न उठता है, तो आकार है तो ये सीमा, हम जब भी आकार का बात करते हैं तुरंत ही हमें एक सीमित आकार के बारे में हमारे मन में विचार आ जाता है, क्योंकि हमारा आकार क्या है, सीमित है। लेकिन हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि परम सत्य क्या है, पूर्ण है, वो हमारे अनुभव के उनके अंदर हमारे अनुभव में जो भी है वो भी है, और हम अनुभव के परे जो है वो भी है। दैट विच इज विद इन अवर एक्सपीरियंस एंड बियॉन्ड अवर एक्सपीरियंस ही पोजेसेस, दैट इज पूर्ण। तो इसलिए उनका आकार ऐसा है, वो उनको आकार भी है, वो असीमित भी है, तो ये हमें जानना चाहिए। तो ऐसे हमें बात को प्रस्तुत करना चाहिए। तो अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, उनके रूप क्या है, अनंत है, एक ही साथ में, उनको एक ही साथ में आकार भी है और अनंत भी है, इसको अचिंत्य वेदा वेदा तत्व कहते हैं। तो ये परिपूर्ण समझ है। तो ऐसे हम लोग बात करते हैं। तो समझ में आ गया। अभी प्रश्न क्या था, भगवान का साकार रूप है या निराकार है, परम सत्य, सॉरी परम सत्य क्या है, भगवान बोल दिया तो फिर ऐश्वर्य युक्त हो जाते हैं, वो अपने आप साकार रूप हो जाता है। परम सत्य क्या साकार रूप है या निराकार है, ऐसे प्रश्न होता है। तो परम सत्य का हम लोगों ने पहले ही परिभाषा देख चुके हैं, या शास्त्रों में उनका परिभाषा आ जाता है कि वेदांत में ऐसे वर्णन हुआ है कि वो जन्मादेश से उन जिनसे सब कुछ निकलता है, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, वो एक परिभाषा है। दूसरा परिभाषा क्या है, ओम पूर्णम, वो पूर्ण है। तो हमारा वाद उनके प्रति है, जो लोग परम सत्य को निराकार मानते हैं कि भगवान निराकार है तो वो सीमित, मतलब इसका मतलब वो सबका स्रोत है, तो वो आकार का भी स्रोत होना चाहिए, उनके अंदर भी आकार होना चाहिए, वो पहला तर्क है या वाद है। दूसरा है कि वो पूर्ण है तो उनके अंदर भी होना नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ है कि उनके अंदर वो पूर्ण नहीं हो सकते, उनके कुछ कमी है। तो ऐसे हम लोग बात करते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि आप उनको कुछ आकार देकर उनको सीमित कर रहे हैं, आप हम उनको कहते हैं, तो आप क्यों ऐसे सोचते हैं कि आकार मतलब सीमित ही होना चाहिए, क्योंकि आपके अनुभव के अनुसार इस भौतिक जगत में आकार मतलब सीमित होते हैं, लेकिन पूर्ण का हम लोगों ने पहले परिभाषा दिया है कि तो वो हमारे अनुभव के परे भी है, तो उनका ऐसे आकार है जो सीमित नहीं है, एक ही समय पर वो सब जगह विद्यमान हो सकते हैं, तो इसको अचिंत्य वेदा वेदा तत्व कहते हैं। तो फिर एक और चीज होता है, वो पूर्ण है तो उनका निराकार स्वरूप भी होना चाहिए, है ना, वो भी हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अंत में भगवान क्या है, वो सकार है, उनका निराकार रूप भी है लेकिन उनका सकार है, इसलिए वेद शास्त्रों में विशेष करके भागवतम में जब शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को उन्होंने पूछा कि परम सत्य क्या है आपके अनुसार, तो फिर सुत गोस्वामी ने उसका परम सत्य को वर्णन किया। वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो वो कहते हैं वदन्ति तत्तत्वविदस, जो तत्व को जानते हैं वो कहते हैं, या जो परम सत्य को जो साक्षात्कार किया है वो जानते हैं वो कहते हैं कि परम सत्य क्या है, तत्वम यज्ञानम अद्वयम, ये अद्वय ज्ञान है। अद्वय ज्ञान का क्या अर्थ होता है, नॉन ड्यूअल सब्सटेंस। अद्वय ज्ञान का क्या अर्थ है, तो या शरीर और आत्मा के बीच में उनका कोई अंतर नहीं है, तो उसको अद्वैय ज्ञान कहते हैं। और अद्वैय ज्ञान का वो अर्थ होता है नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। समझ में आ गया इस श्लोक के आधार पर अद्वैय ज्ञान का क्या अर्थ होता है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। ऐचे चेतन, ज्ञान मतलब चेतन है, अद्वैय मतलब अद्वितीय चेतनशील युक्त व्यक्ति। नित्यो नित्यानाम सभी चेतनों में वो चेतनीय चेतन है, मतलब वो सर्वोच्च चेतन। सभी जीव क्या है, चेतन युक्त है जीव, भौतिक जगत जड़ है, लेकिन सभी जीवों में वो श्रेष्ठ है, उनके तुलना कोई नहीं कर सकते, इसलिए उनको अद्वैय ज्ञान कहा गया। ऐसे अलग अलग उसका अर्थ होता है, अद्वैय ज्ञान शब्द का अर्थ तत्वम यज्ञानम अद्वयम। So, और क्योंकि अलग अलग लोग उनको अलग अलग स्तर पर साक्षात्कार करते हैं, इसलिए उनका अलग अलग स्वरूप भी है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, उनको ब्रह्म कहते हैं जो उनको निराकार स्वरूप को उपासना करते हैं, वो ब्रह्म कहा जाता है उनको, उस स्वरूप को ब्रह्म कहते हैं। और जिनको अंतर्यामी के रूप में वो देखते हैं उनको परमात्मा कहते हैं, और वो जो लोग उसका साक्षात्कार किया है वो परमात्मावादी बन जाते हैं। फिर जो उनको सकार रूप में अंत में देखते हैं, सभी ऐश्वर्यों से युक्त, उनको भगवान कहते हैं। अंत में भगवान क्या है, परम सत्य क्या है, वो भगवान है, श्री भगवान, वह सभी ऐश्वर्यों से युक्त है, षड ऐश्वर्य युक्त है। भगवान शब्द का परिभाषा विष्णु पुराण में कौन देते हैं, पराशर मुनि, इसको बता है वो श्लोक माधवेंद्र प्रभु, कौन सा, ज्ञान वैर यश्चैव शन्नम भग, बहुत ही महान विद्वान और पंडित है, आप नींद में भी श्लोक पढ़ लेते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी ऐसे बोलते थे, कोई भी आ जाए मेरे साथ वाद विवाद करने के लिए, मतलब ज्योतिष और जो मैथमेटिक्स गणित शास्त्र है उसके ऊपर, दिन में हो या रात में हो, उनको हम काट देंगे ऐसे। ऐसे 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 विद्वान थे ज्योतिष शास्त्र में और गणित में, ऐसे प्रकांड पंडित थे। एक बार तो जब वाद विवाद हुआ, वो व्यक्ति वो स्टेज के ऊपर ही मलमूत्र त्याग दिया उसने। तो वो भक्ति सिद्धांत सच, तो ये पराशर मुनि वर्णन करते हैं ऐश्वर्यस्य, समग्र ऐश्वर्य जिनके अंदर है और शक्ति, वीर्यस्य यशस्य, ये समग्र शब्द क्या है, पूर्ण मात्रा में समग्र संपूर्ण इसको कहते हैं। ये शब्द सभी को लागू होता है, सिर्फ ऐश्वर्य को लागू नहीं होता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यश यशश श्रिया, वीर्य मतलब शक्ति, यश जानते हैं, श्री मतलब सुंदरता, ज्ञान वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य, ये सभी को ये समग्र शब्द लागू होता है। संपूर्ण, जिनके अंदर पूर्ण मात्रा में या संपूर्ण मात्रा में ये छह ऐश्वर्य है उनको भगवान कहते हैं। तो आप कभी कभी ऐसे होता, मानव इतिहास में आप लोग देखेंगे तो ऐसे किसी की आप कोई पुराण पढ़िए, कोई भी इतिहास पढ़िए, ऐसे व्यक्ति के बारे में कहीं पर वर्णन नहीं हुआ है जिसके अंदर ये छह ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। वो सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन हुआ है, इसलिए वो क्या है, वो भगवान है, श्री भगवान वाच, ऐसे यहाँ पर हम लोग सुनते हैं श्री भगवान वाच। तो ये भगवान शब्द का अर्थ है। कभी कभी भगवान शब्द को एक शक्तिशाली या कोई ऐसे एक ऐश्वर्य को थोड़ा ज्यादा प्रस्तुत करता है तो उनको भी भगवान करके संबोधित किया, लेकिन हमें ये जानना चाहिए यहाँ पर कृष्ण क्या है, वो परम देवोत्तम पुरुष है, वो परम सत्य है, तो वो स्वयं भगवान है। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में वो श्लोक भी उल्लेख कर, ये ते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। तो ये श्लोक जो है वो क्या का वर्णन करता है, सभी अवतारों में जो श्रेष्ठ कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण है, या सभी अवतारों का स्तोत्र है वो अवतारी कृष्ण है, वो अवतार नहीं है, वो अवतारी कृष्ण है, वैसे वर्णन करता है। ही इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इनकार्नेशंस। लेकिन प्रभुपाद इसको इसलिए उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पर कि क्योंकि वो स्वयं भगवान है, पूर्ण षड ऐश्वर्य पूर्ण युक्त है, इसलिए वो श्लोक को यहाँ पर उल्लेख है, क्योंकि इस श्लोक में तो अवतारों के बारे में वर्णन नहीं हो रहा है। इस श्लोक में प्रभुपाद उसको उल्लेख इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचे कि हम लोग भगवान एक ऐसा कुछ ऐश्वर्य को प्रकट किया है उन्होंने, जैसे अन्य लोगों को हम लोग भगवान करते, एक शक्तिशाली व्यक्ति को भगवान करके संबोधित करते हैं, वैसे ही कृष्ण को ऐसे संबोधित किया जा रहा है, ऐसे नहीं, वो स्वयं भगवान है, इसलिए उनको ऐसे श्री भगवान वाच करके संबोधित किया जा रहा है। तो उसको ब्रह्म संहिता में भी सिद्ध किया गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राजेर गोविंद सर्व कारण कारण। परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, वो परम नियंता है, उनका सच्चिदानंद विग्रह है, वो सबका आदि है, वो सभी कारणों का कारण है और उनका कोई आदि नहीं है, ऐसे कहते। पहले भी हम लोगों ने देखा था ना, अलग अलग ऐसे सभी आचार्यों ने भी स्वीकार किया, इसलिए हम लोगों को भगवान कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति नहीं मानना चाहिए और ऐसा एक ऐतिहासिक व्यक्ति भी नहीं मानना चाहिए, वो स्वयं भगवान है, आदि भगवान है, परम सत्य है, तो वो हमें समझना चाहिए। अभी परम सत्य बोल रहे हो, तम तथा कृपया, वो क्या है, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। तो कुतस्त्वा, कुत शब्द को उपयोग करके भगवान आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। क्यों आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि पिछले तात्पर्य में भी हम लोग देखते हैं, अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उसे ऐसे आचरण की आशा न थी। कैसे आचरण, वो शोक करना, भौतिक दया दिखाना, देहात्म बुद्धि में होना, ये ऐसे आचरण या बर्ताव को उनसे आशा नहीं की गई थी। तो इसका अर्थ क्या है कि जो क्षत्रिय होते हैं उनको भी आत्मज्ञान होना चाहिए, उनको भी आत्मज्ञान का जरूरत होता है, सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं, क्षत्रियों के लिए भी आत्मज्ञान का जरूरत होता है। तो या उनको आत्मज्ञान होता है इसलिए उनसे ऐसे बर्ताव आशा नहीं की जाती। इसको देखकर भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आश्चर्यचकित हो रहे, इसलिए ये शब्द उन्होंने बोला। कुत, कहाँ से आ गए ऐसे कश्मलमिदम, कश्मलमिदम मतलब ये कलमश कहां से आ गया आपके अंदर, डर्टीनेस। देहात्म बुद्धि क्या है, ये कलमश है। ये आप जानते हैं ना कलमश, यहां पर गटर है ना कलमश, आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा वहां पर जाकर आइए, उसका अनुभव करके आइए, वैसा ही है ये, बहुत ही पतित अवस्था है ये। कुत्ते सुहर जैसे लोग ही ऐसे हो सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं, इसलिए भगवान को आश्चर्यचकित हो गए, भगवान आश्चर्यचकित हो गए। आप क्षत्रिय हो, इसका क्या अर्थ होता है, अर्जुन तो क्षत्रिय था, और आगे कुतस्व कश्म अनार्य जुष्टम कहते हैं, तो पिछले तात्पर्य में अर्जुन तो क्षत्रिय था, यहां पर भगवान अर्जुन को आर्य समाज में, आर्य समाज से आते हैं आप, आर्य समाज मतलब ये दयानंद सरस्वती का आर्य समाज नहीं, आर्य समाज मतलब जो जीवन के मौल्य को जानते हैं, जो जिनका समाज आत्मा के ज्ञान पर आधारित है, उसको सही में आर्यन आर्य सभ्यता कहते हैं। अच्छा है कि हम लोग ये शब्द यूज करें आर्य सभ्यता, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज ना करें। सो आर्य समाज से ये जो दयानंद सरस्वती का आर्य समाज क्या है, वो लोग वेदों को, ऐसे बहुत सारे समाज सुधारण आंदोलन शुरू हुआ 19वीं सदी में और 20वीं सदी के आरंभ में भी, वो लोग क्या करने लगे, वो ईसाई धर्म के प्रभाव में आकर, पाश्चात्य धर्म के प्रभाव में आकर, या पाश्चात्य देश का जो विज्ञान है आधुनिक विज्ञान में आकर, वो लोग और भारतीय संस्कृतों को दोनों को क्या करने लगे, मिलजुल के कुछ ऐसा आंदोलन प्रस्तुत करने लगे वो, क्योंकि अपने आप को अभी समय बदल रहा था, लोग जो वेदों को अध्ययन है वो छोड़ देगा, क्योंकि जो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अपने पाश्चात्य देश का जो शिक्षण प्रणाली है वो वो लागू कर दिए यहाँ पर, क्योंकि उनका राज्य चल रहा था, तो उसके कारण जो वैदिक संस्कृति को जो अनुशीलन करते हैं, उनका अनुगामी है, उनको क्या मानने लगे, ओल्ड फैशन और पुराने जमाने के, या कुछ ऐसे सुधारित क्या बने उसको, अनसिविलाइज्ड सभ्य भी उनका प्रगति नहीं हुआ है, ऐसी धारणाएं लोगों में आने लगी वो लोग तो। लेकिन अंत में इसको तो त्याग नहीं, उससे बहुत ही आसक्त थे भारतीय या वैदिक सभ्यता से, तो उसको भी त्याग नहीं सकते हैं, और उसको पूरी तरह से पालन भी नहीं कर सकते, पालन किया तो हम लोग असभ्य बन जाएंगे, तो इसलिए दोनों को मिला के अलग अलग आंदोलन प्रस्तुत करने लगे, एक न्यू प्रोडक्ट बना के। तो वो ऐसा एक न्यू प्रोडक्ट क्या है, दयानंद सरस्वती का आर्य समाज है। तो वो लोग क्या करने लगे, विशेष करके वेदों को एक साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप देने लगे, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, विज्ञान जो है अधिकृत ज्ञान है, वो सर्वोच्च अधिकार है, वो अधिकारी है ज्ञान में वैज्ञानिक लोग, वेदों को हमें क्या करना चाहिए, उससे अपडेट करना चाहिए, या उसको वो स्वरूप देना चाहिए। अग्नि मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोल दिया वो लोग, ऐसे अलग अलग यू नो कुछ है। वेदों में अग्नि देव या वायु देव मतलब विंड एनर्जी बोला, ऐसे कुछ 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 सबको मिस इंटरप्रेट करने लगे वो लोग, साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वैदिक लिटरेचर। प्रभुपाद जी ने भी भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट शुरू किया, वो इसलिए शुरू नहीं किया कि हम लोग वेदों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इंटरप्रेट करेंगे उसको। प्रभुपाद बोलते हैं, ऑन प्रिंसिपल वी अपोज साइंस, इफ दे से यस वी विल से नो। तो वो चाहते थे प्रभुपाद। हम लोग विज्ञान को क्या करेंगे, आधुनिक विज्ञान को हम लोग सैद्धांतिक रूप से हम लोग उसको विरोध करेंगे, वो ये सही है बोले तो हम लोग वो सही नहीं है बोलेंगे, ऐसे प्रभुपाद कहते हैं। तो ये साइंटिफिक प्रीचिंग मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग उसको तो बाद में इस्कॉन में भी ऐसे शुरू हो गए, सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड रिलीजन शुरू हो गया, तो वो सिंथेसाइज करने लगे। लेकिन लेकिन प्रभुपाद का जो विचार, वैज्ञानिकों को प्रचार करने का विचार अलग थे। तो एनीवे, तो वो आर्य समाज को हम लोग स्वीकार नहीं करते। आर्य समाज का अर्थ और यार ये बहुत ही आर्यन इन्वेजन थ्योरी, वो भी हमें जानना चाहिए। तो उसके अनुसार जो यूरोपियन लोग है, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, वो लोग है, वो आर्य है, वो लोग 3000 साल पहले यहाँ पे भारत में आकर यहाँ के लोगों को उद्धार करके वेदों को लिखा उन्होंने, ऐसे वो कहते हैं। और अभी फिर से पतित हो गया है, फिर से हम लोग वापिस आए उनको उद्धार करने के लिए, ऐसे वो लोग अंग्रेज लोग जब यहाँ पर आए, ये ऐसे उन्होंने क्या है मत को प्रचार किया उन्होंने धारण को। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देखा भगवद गीता क्या है, 5000 साल से है, और उसका पूर्व इतिहास देखेंगे तो 20 लाख साल से है। तुम क्या 3000 साल, 500 साल का क्या इतिहास बता रहे हो, तो ये मूर्खता का इतिहास है। इसलिए ये आर्यन शब्द को हिटलर ने भी उपयोग किया, हम लोग बहुत सभ्य लोग है इसलिए हमें पूरा दुनिया को जीतना चाहिए, इसलिए ये युद्ध शुरू हो गया, दूसरा युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जर्मन लोग आर्य लोग है, सबसे सिविलाइज्ड लोग, आर्य का मतलब है बहुत ही सभ्य लोग। यहाँ पर प्रभुपाद उसको वास्तविक अर्थ बताते हैं, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, जिनका सभ्यता आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है, क्योंकि पिछले श्लोक में ही उसको खंडन किया गया है, अज्ञान को खंडन किया। तुम अपने आप को जर्मन बोलते हैं तो वही गोकर है वो वही देहात्म बुद्धि है, वही कुत्ते बिल्ली का क्या है स्तर है, वो आर्य का सभ्यता नहीं है। आर्य सभ्यता मतलब ये ज्ञान के ऊपर, आत्मा के ज्ञान के ऊपर, और आध्यात्मिक सभ्यता के ऊपर आधारित है वो। तो या दूसरे शब्दों में सरल भाषा में कहना है तो वर्णाश्रम सभ्यता को, वर्णाश्रम धर्म को ही आर्य सभ्यता कहते हैं, आर्य समाज कहते हैं। इसलिए क्षत्रिय को भी क्या होना चाहिए, ये आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए भगवान क्या कर रहे, अनार्य जुष्टम कह रहे, आप क्षत्रिय होकर आर्य सभ्यता में जन्म लेकर आपको आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन आप देहात्म बुद्धि में दया और शोक कर रहे हो, इसलिए आप क्या है अनार्य के लिए योग्य नहीं है, ऐसे बर्ताव, ऐसे उनको खंडन कर रहे हैं। सो और कुछ भगवान क्या कहते हैं, अस्वर्ग्यम, ये स्वर्ग को प्राप्त नहीं करेगा। अकीर्तिम कर्म अर्जुन, वो कीर्ति भी नहीं लाएगा। तो ये दोनों तात्पर्य पढ़िए प्रभु। तो पहले तात्पर्य में क्या होता है, तो ज्ञान और अज्ञान के बारे में परिभाषा दे रहे प्रभुपाद, और दूसरा क्या है मधुसूदन शब्द का महत्व वर्णन कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि क्षत्रियों को आत्मा का ज्ञान होना चाहिए।
भौतिक पदार्थों के प्रति करना शोक ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण है, शाश्वत आत्मा के प्रति करना ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है, इसने मधु नामक असुर का वध किया था, और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस कल्याणकारी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से मुक्त सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अथवा स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शुद्ध कहलाता है, अर्थात ही शोक करता है।
लिटिल फास्ट
उससे ऐसे आचरण की आशा ना दी। भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शौक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य में उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया।
हाँ, एक और चीज यहाँ पर भगवत गीता का उपदेश भी उद्देश्य भी वहाँ पर वर्णन आता है। हम लोगों ने पहले इसको पढ़ा था ना, भगवत गीता का क्या उद्देश्य है, अज्ञान से हमें मुक्त करना चाहिए।
यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। इसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे।
ये दूसरा अध्याय का सार है संक्षिप्त, फिर तात्पर्य दूसरा तात्पर्य
श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान भी कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की तीन अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की धारणा इस प्रकार बताई गई है, बदन्ति तद्विदि स्मरन्ति तद्विदि सत्वम् यज्ञानम्
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते श्लोक आई विल टेल।
परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी तीन दिव्य पक्ष होते हैं, यथा रूप सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ लोग कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। तो नौसिखिया सूर्य प्रकाश उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है। उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानता है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वह सर्वोच्च अध्यात्मवादी है। क्योंकि परम सत्य के अध्ययन में अगर सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला और सूर्य लोक की भीतरी बातें, तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता, फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है, समस्त धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से मुक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिका यह नहीं कर सकता कि उसके पास सारा धन शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्म शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर है। ये आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कार्यों के परम कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त है, कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष है और उनका शरीर सचिदानंदमय है। मेरे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। भगवान में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को अधिक आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। छठे छात्र कला पंसा कृष्णा सुदर्शन स्वयं इंडिया इंडिया में अपना मोटम
नहीं गई
है। यहाँ पर बड़े सारे अवतारों की सूचियाँ यहाँ पर भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः कृष्णा आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा अशोक के लिए शोक करना सर्वदा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने खुद शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों का भाग्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। ध्यानमूर्ति से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या परमात्मा का साक्षात्कार है। तो भौतिक जगत के ब्रह्म नाम स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय का हिंदू युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था, उसकी यह कायरता अनार्य के लिए शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने सज्जनों पर इस प्रकार की कल्पना का अनुमोदन किया।
हरे कृष्णा, आपका कोई प्रश्न टीका टिप्पणी? सभी लोग थोड़ा रेस्ट लेकर आइए। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर अस। यहाँ पर भगवान ना, क्योंकि ये जो हम लोगों ने बात प्रस्तुत किया उसको कोई खंडन नहीं कर सकता, क्योंकि ये 5000 साल से भगवद्गीता है। यही आर्यन इन्वेजन तरीके से खंडन करने का, और 20 लाख साल से भगवद्गीता उपस्थित था, तो इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से बना। इतना इतना बात बहुत है ना, बहुत काफ़ी है। Then if you want to give all archaeological evidences, that evidence is but we always base our arguments on Bhagavad-gita. Kyunki wo sab their carbon dating techniques, archaeological evidence to usko carbon dating techniques wagera use karna padega. So wo sab they are there but they may, that those evidence may break down, right? और एविडेंस इज दिस भगवद्गीता, उसको कोई करना नहीं है ना। क्या है प्रभु जी, अद्वैतवाद कितना क्यों फैला? या बहुत फैला। ये कारण उसके लिए है कि भगवान को सकार रूप में जानने से निराकार रूप में जानना आसान है ना। अभी आकार है, उसका विरुद्ध क्या है? निराकार। आजकल बदल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण हो रहा है ना बड़े पैमाने पर।
कोई मेरे बता रहा है, मैं कर चुका हूँ।
या ये प्रशिक्षण की बहुत जरूरत है, भगवद गीता के जो सिद्धांत है ना उसमें प्रशिक्षण की बहुत जरूरत है। या वो ग्रंथ को हमें है उनमें भी है, ईसाई में भी नहीं बहुत है, बहुत है उनमें भी बहुत है। बहुत प्रशिक्षण का बहुत जरूरत है, बहुत बहुत प्रशिक्षण लेना चाहिए, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको प्रचार करना चाहिए।